अच्छा, पिछले दो रविवार से इस प्रसंग के ऊपर चर्चा हो रही है कि अर्जुन हस्तिनापुर से 7 महीने बाहर रह चुके थे, भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका गए थे, और जब इतने महीनों से लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हुए थे और भीमसेन से अपनी चिंताग्रस्त विचारों को व्यक्त कर रहे थे। सब जगह अशुभ लक्षण उनको दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई दुर्घटना होने वाली है, और उनको संशय हुआ कि शायद ऐसा होगा कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने निजी धाम को लौटकर चले गए होंगे। इस समय अर्जुन लौटकर आए, बड़े निराश स्वभाव के, सर नीचे किया हुआ, आंखों में पानी और शरीर का पूरा तेज खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर महाराज ने कई प्रश्न पूछे अर्जुन से और अर्जुन ने वही कहा जिसका डर युधिष्ठिर महाराज को था। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण अब हमारे बीच में नहीं रहे, और जिन श्री कृष्ण की वजह से मैं सब कुछ कर पाया, हम सब पांडव युद्ध को जीत सके, जिनकी कृपा से ही हमने इतने सारे अद्भुत कार्य किए, वो श्री कृष्ण अभी हमें छोड़कर चले गए। तो उन सब घटनाओं को याद कर रहे थे अर्जुन, कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कृष्ण भगवान की कृपा से ही उन्होंने सारे कौरवों को परास्त कर दिया, किस प्रकार से अनेक अनेक परिस्थितियों में से जब गुजरे थे केवल कृष्ण उनके साथ में थे इसलिए उन परिस्थितियों से निकल पाए, कृष्ण की कृपा से भीमसेन जरासंध का वध कर पाए। और इस प्रकार सोचते सोचते अर्जुन अब यह कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, वो घटना स्मरण कर रहे हैं जो कि मनुष्य के लिए करना बहुत कठिन है, और वो क्या है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। यह उन्हीं का प्रताप था, उन्हीं का मतलब श्री कृष्ण का, कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा पर्वतराज की कन्या उनकी पत्नी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए, और इसके अतिरिक्त मैं इस शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। देवताओं को वैसे मनुष्य समाज का संबंध काफी गहरा है, कलयुग में हम देवताओं को देख नहीं सकते हैं, सत्ययुग त्रेतायुग में देवलोक और पृथ्वी लोक के बीच में आना जाना अक्सर हुआ करता था, द्वापर युग में काफी कम हुआ लेकिन फिर भी हुआ करता था। अर्जुन को यह सौभाग्य मिला कि वो देवलोक जा सके, इंद्रदेव शिवजी से साक्षात भेंट कर सके, उनका दर्शन कर सके। हुआ ये कि जब पांडव काम्यक वन में वनवास में थे तो एक बार सारे पांडव काफी निराश हो चुके और सोच रहे थे कि और कितने साल यहां रहना पड़ेगा, और यहां जंगल में रहकर हम किस तरह से युद्ध की तैयारी कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिनका प्रयोग करके हम कर्ण भीष्म द्रोण जैसे महान योद्धाओं को हम परास्त कर सकें। जब ऐसे चिंतित अवस्था में थे तो अचानक वहां पर वेद व्यास आए। वेद व्यास तो सारे वेद पुराण उपनिषदों के रचेता हैं, संपादक हैं, इसलिए उनका नाम है व्यास। व्यास मतलब संपादक। तो व्यासदेव ने युधिष्ठिर महाराज के मन की बात जान ली और कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं आपको द्रोण, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त करने का मार्ग बताता हूं। मैं आपको एक बहुत गुप्त मंत्र सिखाऊंगा और ये मंत्र सीखकर आप ये अर्जुन को सिखाइए, जिससे कि अर्जुन बहुत तेजी से चल पाएगा, मन की गति से हिल पाएगा, और उसे हिमालय जाने का आदेश कीजिए। हिमालय में ऊपर जाने से फिर वहां देव लोकों का संबंध से संबंध स्थापित करके उन्हें देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने चाहिए, और इन अस्त्रों से की सहायता लेकर फिर वो कौरवों को परास्त कर पाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके साथ में जो ब्राह्मण थे उनकी सलाह ली और एक उपयुक्त दिवस के जो शुभ घड़ी थी उस समय ये जो मंत्र है प्रतिस्मृति ये अर्जुन को सिखाई अकेले में जाकर। अर्जुन ने यह मंत्र अच्छी तरह से सीख लिया और फिर युधिष्ठिर महाराज ने आदेश दिया कि अर्जुन अब तुम देवलोक में जाने की तैयारी करो और वहां से ऐसे शस्त्र लेकर आओ जिससे कि हम कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। अर्जुन ने तपस्या की थोड़ी बहुत और स्नान करके जो मंत्र सीखे और फिर प्रतिस्मृति मंत्र के बल पर बहुत तेजी से वहां से निकलने की सामर्थ्य उनमें हुई। जाते जाते पांडवों को बहुत बुरा लगा, द्रौपदी देवी को भी बहुत बुरा लगा, वो सब सोच रहे थे कि अर्जुन के बिना हम कैसे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे की परिस्थिति सोचकर अर्जुन को तो जाना ही था। तो अर्जुन निकल पड़े वहां से और इतनी तेजी से चले मानो कि मन की गति से चल रहे थे और फिर बहुत ही जल्द हिमालय में मंदर पर्वत पर वो पहुंच गए। जैसे ही ऊपर ऊपर और भी जा रहे थे तो उस समय अचानक उनके सामने एक ब्राह्मण आ गए, स्वर्ण वर्ण के, बड़े तेजस्वी, मानो कि उनके भीतर अग्नि जल रही है, और उन्होंने जोर आवाज में उन्होंने आवाज लगाई, ठहरो, कहां जा रहे हो? ऐसे लगता है कि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन यहां पर तो कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है, यहां के ऊपर तो कोई मनुष्य नहीं जा सकते, यहां के ऊपर तो केवल देवता जा सकते हैं, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, और यहां पर अस्त्र शस्त्र तुम्हें त्याग करना होगा, क्योंकि यहां इस लोक की प्राप्ति केवल वो लोग कर सकते हैं जो सत्य और अहिंसा को स्वीकार करते हैं। तो अर्जुन ने कहा, यह तो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं युधिष्ठिर महाराज का छोटा भाई अर्जुन हूं और मुझे अपने बड़े भाई की सहायता करनी है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत अन्याय हुआ है और मैं क्षत्रिय हूं, अन्याय के खिलाफ युद्ध करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं मेरे अस्त्रों को त्याग नहीं सकता। तो उस समय वो ब्राह्मण प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे धर्म परायणता को देखकर मैं प्रसन्न हूं, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं हूं इंद्र, देवराज, शक्र, और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। तो यही मौका ढूंढ रहे थे अर्जुन, इसी हेतु तो आए थे अर्जुन यहां पर। तो अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर बोले कि मुझे आपके दिव्य अस्त्र आप प्रदान कीजिए, यही मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं कौरवों को परास्त करूं। तो उस समय इंद्रदेव ने कहा कि केवल मेरे अस्त्र क्यों, मैं आपको देवलोक में ले जा सकता हूं, वहां हमेशा के लिए शाश्वत जीवन तुम्हें दे सकता हूं, हजारों हजारों साल वहां हमारे संग तुम रह सकते हो, तो वो छोड़कर केवल थोड़े अस्त्र शस्त्र क्यों मांग रहे हो? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं मेरे भाइयों को छोड़कर कैसे इस प्रकार स्वर्ग में हमेशा के लिए रहूं, वैसे मेरे भाई ने यहां मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अस्त्र प्राप्त करके युद्ध जीत सकूं और मेरे भाई को फिर से राज सिंहासन पर बिठा सकूं, तो इस प्रकार से अधर्म के पथ पर मुझे चलना नहीं है। तो उस समय इंद्रदेव ने कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी परंतु थोड़ी देर बाद, अब मेरा आदेश आपको यह है कि आप यहां शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना और शिवजी से उनके अस्त्र को प्राप्त करो और उसके बाद में फिर मैं तुम्हें देवलोक ले जाऊंगा। तो अर्जुन फिर शिवजी की उपासना करने लगे। अब याद रखिए कि हालांकि यहां भी शिवजी की उपासना हो रही है, इंद्रदेव के पास जा रहे हैं, लेकिन अंततः अर्जुन कृष्ण भक्त हैं और ये सारे महाभारत का युद्ध जो है ये भी कृष्ण की योजना है, जिससे कि वो सारे जो दुष्ट लोग थे पृथ्वी लोक पर उनको खत्म करना चाहते थे। इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस समय पृथ्वी लोक पर थे तो वो ऐसे नहीं कह पाए कि तुम मेरी पूजा करो, वो तो एक साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे थे, तो ऐसे कैसे कह सकते थे वो। तो इसलिए अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्र ने शिवजी के पास भेजा। शिवजी की उपासना की उन्होंने, बहुत कड़ी तपस्या की। महाभारत में व्यासदेव वर्णन करते हैं कि सबसे पहले महीने में उन्होंने केवल 3 दिन में एक बार फल खाया और केवल अपने ध्यान में बैठे थे, अपने पैरों पे खड़े थे, ऊपर हाथ ऊपर किए हुए, और दूसरे महीने में केवल 6 दिन में एक बार फल खाते थे, तीसरे महीने में 15 दिन में एक बार, चौथे महीने में केवल हवा के ऊपर जीने लगे। और इतनी कड़ी तपस्या जब करने लगे अर्जुन तो ब्रह्मांड में एक घुटन सी होने लगी सभी को और ब्रह्मांड के भीतर गर्मी बढ़ने लगी, जिस तरह से कि जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी बहुत बहुत साल पहले, तो देवलोक में हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या हो रहा है, ये गर्मी अचानक क्यों हो गई, हमें घुटन सी क्यों लग रही है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये अर्जुन की तपस्या है, और उस समय शिवजी भी थे। तो शिवजी ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, अर्जुन आपका स्थान नहीं लेना चाहता है, क्योंकि देवता लोग हमेशा इसी बात पर घबराते हैं, कोई तपस्या कर रहा है तो किस्सा कुर्सी का हो जाता है कि कोई यहां आकर हमारा स्थान ले ले, कोई इंद्र देवराज बनने का प्रयास करे या कोई कुबेर बनने का प्रयास करे, क्योंकि असुरों का काम यही होता था, जब भी देवतागण थे हमेशा देवताओं के ऊपर आक्रमण करते थे, उनको स्वर्ग लोक से हटाकर वहां पर राज करने का प्रयास करते थे। तो शिवजी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, अर्जुन को केवल थोड़े शस्त्र चाहिए, तो मैं जाता हूं बहुत ही जल्दी। तो शिवजी वहां अपनी पत्नी उमा देवी के साथ में प्रकट हुए, लेकिन एक अलग रूप में, अपना वेश बदल दिया उन्होंने। और किस वेश में आए, एक शिकारी के वेश में आए और बड़े रंग बिरंगी अपने आप को बनाकर आए, मृग चर्म पहना हुआ था और बाल जटाओं में थी और जटाओं से बाल नीचे आ रहे थे और बड़े भयानक लग रहे थे। उमा देवी ने भी इसी प्रकार का पोशाक पहना और उनके साथ में जो उनके भूत प्रेत थे, जो उनके पार्षद होते हैं, उनके सेवक होते हैं, वो सब भी आए भूतगण, वो भी इसी प्रकार का वेश पहनकर आए, हजारों की संख्या में ये सब वहां पर आए। जब अर्जुन वहां आराधना कर रहे थे तो वहां पर एक असुर आया जिसने एक शुकर का रूप धारण किया। उसने देखा कि यहां पर मेरा शत्रु आया है तो जोर से गरज कर अर्जुन की ओर वो भागने लगा और आक्रमण करने लगा। जब अर्जुन ने देखा तो कहा उस दानव से जो कि शुकर के रूप में था कि मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हो तो इसका फल अवश्य तुम्हें मिलेगा। तो अर्जुन ने अपना गांडीव बाण उठाया और तीर चलाने ही वाले थे कि अचानक दूर से एक आवाज आई, ठहरो। बड़ी बुलंद और गहरी आवाज थी। तो अर्जुन ने इधर उधर देखा और अंततः एक शिकारी को देखा जो कि बहुत बड़े पहाड़ की तरह थे, शक्तिशाली मजबूत शरीर वाले, और उनके संग में एक स्त्री थी और कई उनके साथ में और उनके सहायक थे। तो उस व्यक्ति ने, उस शिकारी ने कहा, जो कि वास्तव में शिवजी थे लेकिन जिनको अर्जुन पहचाने नहीं थे, वो शिकारी कहने लगे कि इस शुकर को मैंने पहले देखा, इसलिए इसे मारने का अधिकार मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं, पहले मैंने देखा, तो अर्जुन ने अपना तीर छोड़ दिया, उस शिकारी में भी तीर छोड़ दिया, दोनों के तीर एक ही समय जाकर उस पशु को लगे और वो पशु मर गया। और उस समय अर्जुन ने कहा कि ये पशु अब मेरा है। उस शिकारी कहने लगा, नहीं, मेरे तीर पहले लगी और मेरे तीर की वजह से ये पशु मर गया है, और तुम कौन होते हो जो मेरे शिकार को आकर छीन लेते हो, और अगर इस प्रकार से तुम मेरे शिकार के ऊपर हक जमाने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा, मुझसे युद्ध करना होगा। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये अधिकार केवल मेरा है, इसलिए आपको अगर ये चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। तो दोनों के बीच में धुआंधार युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने सारे तीर छोड़ना आरंभ किया उस शिकारी के ऊपर, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी, कितने भी तीर अर्जुन क्यों न छोड़े, उस शिकारी को बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। मानो कि वो कोई पत्थर है, कोई असर ही नहीं पड़ा उन सारे अस्त्रों का। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार के अस्त्र छोड़ने लगे। लेकिन अलग अलग प्रकार के अस्त्र छोड़ने के बाद भी वो शिकारी को कुछ नहीं हुआ। शिकारी थोड़े बहुत अस्त्र भी फेंक रहे थे, अर्जुन उनका प्रतिकार कर रहे थे, और अचानक एक अद्भुत बात हुई कि अर्जुन के पास जो तीरों की का भंडार था, जो अक्षय था, जो कि अग्निदेव ने उनको भेंट दिया था, तो वो अचानक खत्म हो गया, खाली हो गया। वो अक्षय होना चाहिए था लेकिन खाली कैसे हो गया, क्षय कैसे हो गया, अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने अपना गदा लिया, गदा भी टूट गया। फिर आखिर और अपने अलग अलग अस्त्र लिए, लेकिन वो शिकारी ने सारे अस्त्रों को तोड़ दिया। आखिर अर्जुन ने अपना तलवार लिया, तलवार से प्रहार किया, लेकिन तलवार ही टूट गया। उस समय अर्जुन सोचने लगे कि ये कौन हो सकते हैं। तो थोड़े देर के लिए अर्जुन पीछे हटे और वहां पे शिवलिंग था, तो भगवान शिवजी की पूजा की, फूल अर्पण किए शिवजी को। और जैसे ही फूल अर्पण करके मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि वो शिकारी के ऊपर भी फूल गिर रहे हैं। तो तुरंत अर्जुन को पता चला कि यह शिकारी ही शिवजी है। तो तुरंत जाकर क्षमा याचना की और दंडवत प्रणाम किया शिवजी को, और कहा कि क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। शिवजी ने कहा, नहीं, अपराध नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। जिस शूरवीरता से तुमने यहां युद्ध किया है, शायद ही कोई और सारे ब्रह्मांड में ऐसा युद्ध कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे शूरता को देखकर इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे मन माने बात पूरी कर सकता हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस समय अर्जुन प्रसन्न होकर बोले, मुझे आपसे अस्त्र चाहिए जिससे कि मैं विजय प्राप्त कर सकूं। उस समय शिवजी ने उनको अपना पाशुपत अस्त्र दिया और कहा कि ये अस्त्र केवल उन लोगों से प्रयोग किया जा सकता है जो कि ऊपर के लोक के निवासी हैं, मनुष्य के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य इसका प्रतिकार करने के काबिल नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर सारे ब्रह्मांड में बहुत उत्पात हो जाएगा। तो उस समय अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और शिवजी ने कहा कि जो मंत्र मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं इस पाशुपत अस्त्र को छोड़ने के लिए, ये मंत्र देवताओं को भी नहीं मालूम, ऋषि मुनियों को भी नहीं मालूम। उस जमाने में अस्त्र छोड़ा करते थे केवल मंत्रों से। कितने सूक्ष्म था वहां उस समय का विज्ञान। तो खैर, अर्जुन ने सीख ली वो सारे मंत्र, और उसके पहले अर्जुन को वास्तव में सारे देवी देवताओं ने आकर अलग अलग अस्त्र भी प्रदान किए थे। जैसे कुबेर जी आए थे, अग्निदेव आए थे, वरुण देव आए थे, वायुदेव आए थे, इन्होंने सब अपने अपने अस्त्र प्रदान किए थे। तो अंततः शिवजी से अस्त्र प्राप्त करके जब ये देवतागण भी वहां आए, तो फिर इंद्र भी वहां आए, और उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं आपसे भी अस्त्र प्राप्त करना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा कि यहां माताली मेरा सारथी अभी ही आने वाला है, तो वो तुम्हें इंद्रलोक, मेरे देवलोक में ले जाएगा, और वहां तुम थोड़े समय के लिए निवास करना, और मैं तुम्हें सारे शास्त्र क्या है वो सिखा दूंगा। और सारे देवता फिर अपने लोक को चले गए और अर्जुन प्रतीक्षा करने लगे, और अचानक आकाश में से मानो कि एक दूसरा सूरज ही नीचे पृथ्वी की ओर आ रहा था, इतना प्रकाशमान। और अर्जुन पहले देख नहीं पाए और फिर पहचाना कि ये तो इंद्रदेव का रथ है, 100 घोड़ों से खींचा हुआ, और उसके पीछे सारथी है माताली। माताली आए वहां पर और अर्जुन को उसमें बिठा दिया और अर्जुन के साथ में फिर वो रथ ऊपर आकाश की ओर उड़ पड़ा। अब ये घोड़े आकाश में कैसे चलते हैं? हमने तो घोड़ों को केवल जमीन पर चलते हुए देखा है, लेकिन ये देवलोक के घोड़े हैं और इंद्रदेव का रथ होने के नाते ये रथ 3 लोकों में कहीं भी जा सकता था, आकाश में, पृथ्वी पर और जल में। तो आसानी से आकाश पथ को स्वीकार करके ये रथ इंद्रदेव के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। और चलते चलते अर्जुन इधर उधर देख रहे थे। जिस प्रकार से जब हम कोई नए प्रांत में जाते हैं रेलगाड़ी में, तो खिड़की के बाहर देखते रहते हैं कि कहां क्या चल रहा है, कैसा स्थान है, कैसे लोग हैं, कैसे घर हैं, यहां खेती क्या है, बाहर देखते रहते हैं। तो उसी प्रकार अर्जुन भी इधर उधर देख रहे थे, सब ऊपर के लोक के निवासी, और आखिर स्वर्ग लोक में पहुंच गए। यहां अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इसी शरीर में पहुंच पाया। वास्तव में यह बहुत ही अद्भुत चीज है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। वो कहते हैं कि केवल वही लोग पुण्य कृताम लोकान, ये जो स्वर्ग लोक इत्यादि है, वो प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने पुण्य किए हैं। पुण्य के द्वारा ही अगले जन्म में हमें स्वर्गलोक की, देवलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस भौतिक शरीर में, मनुष्य शरीर में कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक में नहीं जा सकता। कई लोगों ने प्रयत्न किया था लेकिन असफल हुए थे। राजा त्रिशंकु ने भी प्रयत्न किया था लेकिन इंद्रदेव ने और अन्य देवताओं ने उनको लात मारकर पीछे हटा दिया था। और जब वो नीचे गिर रहे थे तो विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना की। विश्वामित्र मुनि ने फिर से अपने योग के बल पर उनको वापस ऊपर भेजा, लेकिन इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से जो वो राजा थे त्रिशंकु, वो बीच में ही रह गए। और फिर विश्वामित्र मुनि ने जब देवताओं की प्रार्थना सुनी तो त्रिशंकु राजा के लिए एक अलग ही ग्रह लोक बना दिया। तो इस प्रकार से जब तक कि हम पुण्य एकत्र नहीं करते हैं, हम स्वर्ग लोक देवलोक में नहीं जा सकते और कभी भी इस शरीर में नहीं, क्योंकि यह शरीर केवल पृथ्वी लोक के लिए है। स्वर्ग लोक देवलोक में जाने के लिए एक उपयुक्त बहुत सूक्ष्म शरीर, तेजस्वी शरीर चाहिए। लेकिन अर्जुन का सौभाग्य था कि अर्जुन इसी शरीर में जा सके और वो भी स्वयं इंद्रदेव उनको लेने के लिए आए। जब ऐसे बहुत तपस्वी लोग या पुण्यवान लोग जो कि स्वर्ग लोक या देवलोक के अधिकारी होते हैं, उनका देहांत होता है, तो उस समय इंद्रदेव माताली को भेजते हैं उनको लाने के लिए। लेकिन अर्जुन की यह विशेष बात थी कि अर्जुन को जीते जी इसी मनुष्य देह में होते हुए मृत्यु के पहले ही माताली स्वयं इंद्रलोक लेने के लिए आए थे। और अर्जुन सोच रहे हैं, जबकि वो युधिष्ठिर महाराज से भी यहां बात कर रहे हैं, कि ये संभव था केवल कृष्ण की कृपा से। और जब उन्होंने शिवजी को इस प्रकार से युद्ध करके आश्चर्यचकित किया, अर्जुन सोच रहे थे ये भी संभव था केवल इसलिए कि श्री कृष्ण ने उनको ये शक्ति प्रदान की थी और उनको ये सौभाग्य मिला कि सारे देवताओं ने आकर उनको अपने अपने शस्त्र दिए, ये भी श्री कृष्ण की कृपा थी। तो देखिए भक्त को कैसे सोचना चाहिए, हम दूसरे भक्तों के माध्यम से समझ सकते हैं, उनके जीवनी से, उनके रहन सहन के ढंग से, उनकी बातों से हम समझ सकते हैं कि अगर अर्जुन इतने आभारी हैं इन सब चीजों के लिए, तो हमें कितना और आभारी रहना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि जो भी कुछ हमारे पास आज है वो सब केवल भगवान की कृपा से है। तो अर्जुन इस प्रकार से इंद्रलोक में आए और इंद्रदेव ने कहा कि मैं अभी आपको ऐसे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे कि तुम मेरे राजधानी को के ऐश्वर्य को देख सको। इसका मतलब है कि अगर कोई जबरदस्ती स्वर्ग लोक में जा तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर जाए भी तो वहां के ऐश्वर्य को देख नहीं पाएगा जब तक कि उसे वो विशेष आंखें नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारे वैज्ञानिक हमेशा भ्रमित रहते हैं। माताली जब अर्जुन को ले जा रहे थे स्वर्गलोक में, तो उन्होंने बताया कि देखो अर्जुन, ये जो प्रांत है ब्रह्मांड का या ऊपर के प्रांत जो है, वो केवल उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, जिन्होंने सत्य बोला है और जिन्होंने मांसाहार और मदिरापान नहीं किया है, और इसलिए आप यहां आ सकते हो। ये इंद्रदेव की कृपा है। इसका मतलब है कि आजकल के वैज्ञानिक जो कि भगवान को मानते नहीं, धर्म के नियमों के अनुसार चलते नहीं, उनको उनकी दृष्टि कैसे हो सकती है ये ऊपर के लोगों को देखने की? अगर देखेंगे तो केवल ये ग्रह ये लोग देखेंगे अपने दूरबीन से, अपने यंत्रों से, और अगर दूर से ग्रह देखें भी, उस ग्रह के ऊपर जो ऐश्वर्य है, वहां के जो निवासी हैं, उनको तो अवश्य नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए विशेष हमें दृष्टि चाहिए। वो बहुत सूक्ष्म शरीर होते हैं देवता लोगों के, ऊपर के लोग के निवासियों के। हमारे शरीर तो बहुत स्थूल है, लेकिन ऊपर के लोगों के निवासियों के शरीर बहुत सूक्ष्म है, और इन आंखों से हम उनको देख नहीं सकते जब तक कि वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो इसलिए इंद्रदेव बोल रहे थे कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, वो दृष्टि देता हूं, जिससे कि तुम अमरावती को देख सको। इंद्रदेव की राजधानी का नाम है अमरावती। तो इस प्रकार से अर्जुन ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा ऐश्वर्य कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अर्जुन को फिर इंद्रदेव ने बड़े सम्मान से अपने राज दरबार में ले लिया और उनके साथ ही बिठाया, लेकिन थोड़े से नीचे, क्योंकि इंद्रदेव तो राजा है, सबसे ऊपर बैठेंगे। तो अर्जुन अगले श्लोक में जाकर यह भी स्मरण करने वाले हैं कि इंद्रदेव ने मुझे स्वर्गलोक में उनके राज दरबार में बिठाया और उनके संग में बिठाकर सारे कारोबार में मुझे शामिल कर दिया। ऐसा सौभाग्य किसको मिला है कि वो आसानी से स्वर्ग मनुष्य लोक में रहकर वो स्वर्ग लोक में जाकर ऐसे इंद्रदेव के पास में रहे। सत्य त्रेता में होता था, द्वापर में ऐसा बहुत कम था, और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं। तो इंद्रदेव ने वहां फिर अर्जुन को सारे अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सिखाई, और अर्जुन वहां बड़े निपुण हुए उन सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या में। और इस प्रकार से पूरे 5 साल बीत गए, और उस समय पांडव अलग अलग जगह जाते थे, कभी इस वन में, कभी उस वन में, और वहां अलग कई लीलाएं हुई उनकी, लेकिन उनका वर्णन करने के लिए समय तो नहीं है। लेकिन फिर भी 5 साल समाप्त हो गए, तो इंद्रदेव ने कहा कि अब मुझे दक्षिणा देना है तुम्हें। तो अर्जुन ने कहा, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि देवताओं के शत्रु हैं, जिनको हम परास्त नहीं कर सके हैं आज तक, जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनका नाम है निवात कवच, और ये लोग समुद्र के तट पे, नीचे तट में नहीं, नीचे समुद्र के भीतर रहते हैं, उनका स्थान वहां पर है, तो उन्हें जाके परास्त करो। जो भी मैंने अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है तुम्हें, सारे मंत्र, उनका प्रयोग उनको परास्त करने के लिए करो। तो माताली अर्जुन को वहां ले गए, और वहां जब गए तो जल के भीतर प्रवेश किया। जब अर्जुन लौट कर आए थे स्वर्ग लोक से, तो युधिष्ठिर महाराज को ये सब वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से वो जो रथ था इंद्रदेव का, वो पानी के भीतर भी जा सकता था। पानी के भीतर जाकर फिर वो उस शहर के पास गए, निवात कवच जहां रहते थे, और उस रथ की आवाज को सुनकर सारे निवात कवच लोगों को पता चला कि शायद इंद्रदेव आ रहे हैं, ये इंद्रदेव के रथ की आवाज है। और सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आए, और वहां पर एक भीषण धुआंधार युद्ध हुआ। अर्जुन की शूरवीरता को देखकर माताली बड़े आश्चर्यचकित हुए, और अर्जुन माताली की निपुणता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो उन 100 घोड़े वाले रथ को ऐसे चला रहे थे मानो कि उस रथ का एक ही घोड़ा हो। एक घोड़े को संभालना कितना मुश्किल होता है। माताली 100 घोड़े संभाल रहे थे एक रथ, और ऐसे संभाल रहे थे कि अर्जुन को लग रहा था कि एक ही घोड़ा है, इधर उधर ऊपर नीचे बाएं दाएं बहुत ही तेजी से घुमा फिरा कर ले जा रहे थे, और बहुत बड़ी अच्छी तरह से सहायता कर रहे थे अर्जुन की युद्ध में। और इस प्रकार से युद्ध चलता गया। ये जो निवात कवच थे ये माया में जादू टोना में बहुत प्रवीण थे, इसलिए उन्होंने नाना प्रकार के ऐसे अस्त्र शस्त्र माया से उन्होंने प्रयोग किया और वो ओझल भी हो गए, अदृश्य हो गए। और इस प्रकार से पत्थर अस्त्र शस्त्र अदृश्य होकर फेंक रहे थे अर्जुन के ऊपर, लेकिन अर्जुन की सहायता माताली ने की। माताली ने कहा अब ये अस्त्र चलाओ, वो अस्त्र चलाओ। देखिए वो अस्त्र विद्या कितने आगे बढ़ी हुई थी। आज हम लोग केवल बम फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, बम 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 करके जहां फेंकते हैं तो जिनको चाहिए उनके बजाय और 10 लोग और मर जाते हैं। लेकिन ये जो पुराने काल के जो अस्त्र थे इतने सूक्ष्म और इतने आगे बढ़े हुए थे, इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आजकल हम हमारे विज्ञान के बारे में बहुत अहंकार हमको हो गया है कि हमारे टीवी हैं, हमारे कंप्यूटर है, लेकिन वहां की जो सभ्यता थी कितनी आगे और बढ़ी हुई थी। तो खैर किसी न किसी तरह से बहुत कठिनाई से अर्जुन ने इनको हरा दिया और फिर शहर में प्रवेश किया। इसका वर्णन तो बहुत लंबाई से वेदव्यास जी ने किया है महाभारत में, लेकिन संक्षेप में आपको बताया है। माताली फिर कहने लगे सारे ब्रह्मांड में आप जैसा योद्धा नहीं है, देवता गण भी ये निवात कवच को हरा नहीं सके थे, लेकिन आप अकेले इन अस्त्र शस्त्रों के संग में हरा पाए हैं। तो जब अर्जुन युधिष्ठिर को उस समय स्वर्गलोक से लौट के आकर जब ये वर्णन कर रहे थे तो वो बोलने लगे कि मैं उनको निवात कवचों को हरा सका और उसका कारण केवल एक ही है, और वो है क्या है, कृष्ण की कृपा। तो देखिए हर चीज में वो श्रेय कृष्ण को देते थे, अगर गलती होती थी तो वो अपने आप पे वो दोष लेते थे, और अगर कोई भी उनको सफलता मिलती थी तो सबसे पहले श्रेय कृष्ण को जाता है, कठिन से कठिन बात हो सरल से सरल बात हो। इसलिए अर्जुन इतने प्रिय थे भगवान के। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा कि केवल मेरी वजह से होता है, वो जानते थे कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ने ही उनको सब शक्ति दी है, कृपा दी है। तो यहां द्वारका से लौट के आते हुए भी अर्जुन ये सब चीजें याद कर रहे हैं कि कैसे हम स्वर्ग लोग गए, कैसे शिवजी और उमा देवी आश्चर्यचकित हो गईं हमारे युद्ध से, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कभी नहीं किया था। इतना शूरवीर व्यक्ति, देवताओं से भी ज्यादा शूरवीर, इसलिए शिवजी भी आश्चर्यचकित होकर प्रसन्न हुए थे और अर्जुन इसका स्मरण कर रहे हैं और कहते हैं कि शिवजी ने मुझे प्रसन्न होकर अस्त्र दिया, अन्य देवताओं ने भी मुझे अस्त्र दिए, और फिर इंद्रलोक मुझे स्वयं इंद्रलोक ले गए और वहां पर मुझे उनके अस्त्र दिए। और जब लौट कर आए अर्जुन स्वर्गलोक से तो सारे पांडव बड़े प्रसन्न हुए उनको देखकर, और युधिष्ठिर महाराज उन अस्त्रों को देखना चाहते थे। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन ने कहा ठीक है, और जैसे ही अर्जुन अपने गांडीव बाण को धारण किए हुए हाथ में खड़े हुए और मंत्रों का उच्चारण किया, अचानक मानो कि कितने सारे सूरज प्रकट होने लगे और फिर ऊपर के लोग के सारे देवता का नीचे आए, इंद्रदेव भी आए और कहने लगे अर्जुन से कि अर्जुन बिना वजह ये मंत्रों का उच्चारण करना और अस्त्रों को बुलाना ये खतरा का मामला है, तो कृपा करके ऐसे नहीं करना। केवल जब जान का खतरा होगा, केवल जब ऋणभूमि पे इसका इस्तेमाल करना होगा तब मंत्रों का उच्चारण करो, नहीं तो ब्रह्मांड के हित के लिए नहीं होगा। तो फिर अर्जुन ने हाथ नमस्कार करके फिर उनकी बात मान ली। तो देखिए ये अर्जुन की शक्ति जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से वो जीत सके, कर्ण को मार सके, भीष्म को हरा सके, वो सब केवल कृष्ण की कृपा से हो रहा था। और फिर अर्जुन याद करने लगे कि वैसे मुझे और भी स्मरण आता है, कितने सारे घटनाएं हैं हमारे जीवन में, मैं कितने कितने घटनाओं को बोलूं, एक एक घटना में हर बार हमें कृष्ण ने ही बचाया है। और वो उस घटना का स्मरण करने लगे जबकि वो जंगल में थे और दुर्वासा मुनि वहां पर आए अपने 10,000 शिष्यों के संग और भोजन लेना चाहते थे। इसका इतिहास इस प्रकार से है कि एक बार हस्तिनापुर में दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ में आए थे, उस समय पांडव वनवास में थे। दुर्वासा मुनि की आदत थी कि उनका उनको क्रोध बहुत जल्दी आता था और बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते थे, क्योंकि वो शिवजी के अंशावतार थे। शिवजी का नाम है आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो दुर्वासा मुनि क्या करते थे कि जहां भी जाते थे, अगर वो प्रसन्न होते थे किसी के ऊपर तो खूब वरदान देते थे, और अगर थोड़ा भी गुस्सा हो जाते तो खूब शाप भी देते थे। इसलिए सभी लोग दुर्वासा मुनि से बहुत घबराते थे। और दुर्वासा मुनि की आदत थी कि अपने जो जिस जिसके घर में वो जाते थे उनकी सहनशीलता की सीमा के बाहर परीक्षा करते थे। ऐसे ऐसे चीज मांगते थे और इस प्रकार से व्यवहार करते थे कि अगर उनका धैर्य अगर टूट गया तो उनको चांस मिल जाता था और फिर वो शाप दे देते थे। कभी कभी ऐसे करते थे, आकर कहते थे मुझे अभी का अभी भोजन दे दो, और बहुत जल्दी से जो व्यक्ति थे वो भोजन बनाते, और फिर दुर्वासा मुनि कहते मैं अभी स्नान करके आया, और आराम से बहुत लंबे समय के बाद आते और अपने सारे 10,000 शिष्यों के बाद साथ लेकर, और फिर इतने सारे लोगों के लिए प्रसाद बनाया हुआ होता था, और फिर वो कहते अभी हमें भूख नहीं है, तो इतना प्रसाद का क्या करना अभी। और कभी कभी क्या करते थे, रात को 12 बजे उठ जाते थे और तुरंत जगाते थे जिनके घर में रहते थे और बोले मुझे अभी भूख लगी है, तो फिर उनको पकाना पड़ता था 12 बजे। और अगर थोड़ा लेट थोड़ी देरी हो जाती थी या प्रसाद में या सेवा में कोई कमी हो जाती थी तो निंदा करते थे, क्रोधित हो जाते थे। इसलिए जब वो हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन बड़े बड़े चिंतित हो गए कि अभी दुर्वासा मुनि का बड़े ख्याल से अच्छे ढंग से देखभाल करना चाहिए। तो फिर उन्होंने किसी नौकर को दुर्वासा मुनि के पास में आने नहीं दिया, क्योंकि क्या नौकर आकर नौकर होते हैं, क्योंकि उतना ध्यान नहीं देंगे नौकर, वो जानते थे। इसलिए दुर्योधन स्वयं ने आके दुर्वासा मुनि की हर इच्छा पूरी की, छोटी से छोटी इच्छा, क्योंकि दुर्योधन आखिर कूटनीति में बड़े प्रवीण थे। वो जानते थे कि अगर दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया जाए तो फिर हम पांडवों को खत्म कर सकते हैं। तो दुर्वासा मुनि के कंधे पे बंदूक मारकर तीर मारकर वो पांडवों को नष्ट करना चाहते थे, ये चाल थी दुर्योधन की। नहीं तो इस प्रकार से अतिथि सेवा करने के लिए क्या काम था दुर्योधन का। तो दुर्वासा मुनि की ऐसी सेवा स्वयं जब दुर्योधन ने की तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और बोलने लगे कि दुर्योधन तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं मेरे भाई पांडवों से बहुत प्रेम करता हूं। कितना प्रेम करते थे आप तो सब जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जैसे महान ऋषि मेरे घर में पधारे हैं और आपके चरण कमलों की रज हमारे घर में पड़ी है, हमारा अहो सौभाग्य है। मैं चाहता हूं कि पांडवों को भी यह सौभाग्य मिले, वो जंगल में हैं और उनको भी आपकी सेवा का एक मौका आप दीजिए ताकि उनका भी उद्धार हो सके, और आप ऐसे समय जाइए जबकि उनका भोजन समाप्त हो गया है। क्योंकि दुर्योधन जानते थे कि द्रौपदी को सूर्यदेव ने एक अक्षय पात्र दिया था, और जिस अक्षय पात्र के समाप्त होने पर और अगले सुबह तक, अगले दिन की सुबह तक और भोजन नहीं बन सकता था। जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया होता वो अक्षय पात्र जितना चाहे उतना प्रसाद वो बना सकता था, लेकिन एक बार द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया तो फिर उस दिन के लिए वो नहीं देता। तो दुर्योधन ने इसलिए बहुत चतुराई से कहा कि आप इस समय जाइए जबकि उन्होंने प्रसाद का सेवन कर लिया होगा। दुर्वासा मुनि ने कहा तथास्तु। दुर्वासा मुनि मासूम थे, उनको यह सब मालूम नहीं था कि दुर्योधन के हृदय में क्या चल रहा है। तो उस प्रकार जब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर गए तो दुर्योधन वहां हाथ ऊपर हवा में करके नाचने लगे, अभी पांडवों को हमने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। वहां कर्ण आए, फिर दोनों ने आलिंगन किया, कौरव सब एक दूसरे को आलिंगन करने लगे और सोचने लगे आज पांडव सब खत्म हो गए। तो फिर नाचने लगे सब, दुर्योधन और उनके पार्टी। इस प्रकार से दुर्वासा मुनि चलते चलते आ गए जंगल में जहां पांडव निवास कर रहे थे। जब युधिष्ठिर महाराज ने उनको देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया, अर्घ्य इत्यादि से जो भी सामग्री उस वन में उपलब्ध थी उनसे स्वागत किया। और दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हम बहुत दूर चल के आए हैं, बहुत थके हुए हैं। मैं और मेरे 10,000 शिष्य हम भूखे हैं, हम प्रसाद लेना चाहते हैं। हम अभी स्नान करके आते हैं, हमारे गायत्री मंत्र का जाप करके आते हैं, और तब तक आप प्रसाद तैयार रखिए हमारे लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा अवश्य, मुंह से तो कहा अवश्य, लेकिन मन में सोच रहे थे अरे अब क्या किया जाए। द्रौपदी के पास आए और कहा द्रौपदी अभी क्या करना चाहिए। द्रौपदी भी दुविधा में पड़ गई, अब क्या करना चाहिए। तो द्रौपदी ने कहा कि हमारे लिए हर परिस्थिति में उपाय एक ही है और एक ही व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बहुत ही हृदय से कृष्ण को पुकारा और हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे जो हमारे संरक्षण करने वाले, हर परिस्थिति में जिनको जानना इतना कठिन है लेकिन जो सब कुछ जानते हैं, हे कृष्ण आप आइए और हमें बचाइए। क्योंकि दुर्वासा मुनि को आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर उनका शाप पड़ जाए तो हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तो उस समय कृष्ण भगवान द्वारका में अपने महल में रुक्मिणी देवी के साथ में थे। तो भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वहां कोई टेलीफोन से तो द्रौपदी ने उठाकर बात नहीं की थी, क्योंकि द्रौपदी तो वहां दूर जंगल में थी काम्यक वन में, और यहां श्री कृष्ण तो द्वारका में थे, हजारों मील का अंतर था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हृदय के हृदय का हॉटलाइन चलता है, टेलीफोन कनेक्शन चलता है, जो साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो उस वो हॉटलाइन कनेक्शन जो है, अगर वो टेलीफोन का कनेक्शन हमें चाहिए तो हमें भी द्रौपदी जैसे केवला भक्ति, केवला भक्त, हमें ऐसे शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो द्रौपदी की बात को तुरंत समझ गए भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने रुक्मिणी देवी से कहा मैं अभी आया, अभी मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता है। वो ऐसे कहने लगे मैं अभी आया जैसे कि द्वारका में इस महल से दूसरे महल में जाकर आने वाले हैं, जबकि हम कभी अगर मान लो नीचे जाते हैं तो बोलते हैं मैं अभी आया, 2 मिनट में नीचे जाकर फिर से आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से लेकर जंगल में काम्यक वन में जाना था, जो कि हजारों मील दूर था। लेकिन भगवान के लिए काल और जगह है, ये कोई सीमा नहीं खड़ा करते, ये कोई बंधन नहीं खड़े करते हैं। तो तुरंत उसी क्षण कृष्ण भगवान द्रौपदी के सामने हाजिर हो गए। द्रौपदी को पता नहीं चला कैसे अचानक श्री कृष्ण आ गए, लेकिन द्रौपदी में ज्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। उनको श्रद्धा थी कि कृष्ण को पुकारेंगे, कृष्ण आएंगे, और आ गए। और जब वो आए तो कृष्ण बोलने लगे अरे वाह, मुझे क्यों बुलाया है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो द्रौपदी बोलने लगी यही तो समस्या है, अभी द्रौपदी दुर्वासा मुनि आए हैं और ऐसे ऐसे परिस्थिति है, तो तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है, लेकिन अक्षय पात्र खत्म हो चुका, मैंने तो भोजन ले लिया है, तो जो भी उसमें बचा हुआ है वो मुझे दे दो। कुछ नहीं बचा है, मैंने बर्तन धो भी दिए हैं, कुछ तो बचा होगा, दिखाओ मुझे। तो द्रौपदी ने वो बर्तन लाया जो कि बहुत अच्छी तरह से धुला हुआ था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो देखा कि सब्जी और चावल का एक टुकड़ा वहां अंदर अटका हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उठाया अपनी उंगली से और उसको चख लिया और कहने लगे वाह, भगवान श्री हरि अभी बहुत प्रसन्न होंगे। खुद श्री हरि ही बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होंगे। तो कहने का तरीका था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, तो कैसे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मैं ही भगवान हूं। वो तो उन्होंने गीता उपदेश में अर्जुन को बोल दिया बाद में युद्ध के पहले, लेकिन साधारण कार्यों में वो कैसे बोलते। तो फिर जब उन्होंने ऐसे कह दिया तो द्रौपदी और अन्य पांडवों से कहा कि ठीक है अभी आप बुलाओ सहदेव, आप जाके वहां पर सारे दुर्वासा मुनि के शिष्यों को और दुर्वासा मुनि को स्वयं यहां बुलाओ। अन्य जगह बताया गया है कि कृष्ण भगवान ने भीमसेन को कहा, खैर जो भी हो, भीमसेन हो या सहदेव हो, वो बुलाने गए कर दिया था। अचानक उनको ऐसे लगा पेट में कि मानो उन्होंने 10 दिन का भोजन एक साथ खाया हो, पेट इतना फूल गया, ढकेर भी आने लगे और सोचने लगे कि अरे ये क्या हो गया। और उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और सभी शिष्य भी ऐसे पेट में हाथ लग के खड़े थे, सबका पेट भर गया था, इतना भरा था कि भोजन शब्द कहने से उनको लग रहा था कि अभी और हम सुनने की भी इच्छा नहीं होती है, इतना पेट भर गया। फिर दुर्वासा मुनि बोलने लगे अपने शिष्यों से कि देखो अभी हमने युधिष्ठिर महाराज को बोल दिया है कि 10,000 हम लोगों के लिए प्रसाद बनाओ, बेचारे ने बना दिया होगा, और अभी आप वापस जाएंगे और कहेंगे कि हम नहीं लेंगे, हमारा पेट भरा हुआ है। तो युधिष्ठिर और पांडव क्रोध भरी आंखों से हमारी ओर देखेंगे, और भगवान श्री हरि के भक्तों का क्रोध ये तो असहनीय है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं अभी युधिष्ठिर महाराज की दिव्य शक्ति से घबराता हूं, मैं नहीं जा सकता। अब दुर्वासा मुनि अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जब सब लोग दुर्वासा मुनि से घबराते हैं तो दुर्वासा मुनि अभी युधिष्ठिर महाराज के दिव्य तपस्या की शक्ति से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और दुर्वासा मुनि अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त की शक्ति क्या होती है। अगर कोई और योगी होता, कोई भोगी होता, कोई दुर्योधन जैसा आदमी होता, वो परवाह नहीं करते, लेकिन जब पांडव ऐसे अनन्य भक्त थे तो दुर्वासा मुनि चिंतित हुए। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि को अच्छा सबक मिला था बहुत साल पहले। किसी को याद है कब सबक मिला? महाराज अम्बरीश के साथ में उन्होंने ऐसे हरकत करने के प्रयत्न किया था। महाराज अम्बरीश के यहां जाकर भी उन्होंने कहा कि मैं अभी आ रहा हूं, और फिर गए बहुत लंबे समय के लिए बाहर गए। महाराज अम्बरीश को व्रत का उपवास तोड़ना था, उन्होंने केवल एक जल चरणामृत लिया, एक बूंद। दुर्वासा मुनि को अपने योग शक्ति से पता चला कि इस प्रकार से इन्होंने व्रत मेरे आने के पहले उन्होंने पानी का पान किया है। बड़े गुस्से हुए, अपने बाल से को निकालकर नीचे फेंक दिया, एक राक्षस पैदा हो गए और वो आक्रमण करने लगे अम्बरीश महाराज के ऊपर। अम्बरीश महाराज केवल हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण करने लगे। अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सहन नहीं कर पाए, उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र ने आकर उस राक्षस का तुरंत वध कर दिया, और इतना ही नहीं, सीधे दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगे। दुर्वासा मुनि भागे 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 बहुत भागे, लंबे समय तक ब्रह्मांड भर में भागे, लेकिन जहां वो जाए सुदर्शन चक्र पीछे ही पीछे, बस ऐसा कि स्पर्श करने ही वाला है, और उसकी गर्मी इतनी असहनीय। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देवताओं के पास गए, लेकिन हरेक देवी देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, दूर सर, कृपा करके दूर रहिए, हम आपको कुछ नहीं कर सकते, सुदर्शन हमें कहीं खत्म न कर दे। और अंततः नारायण के पास गए, नारायण ने भी बोला, मैं भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तो आपको मेरे भक्त से ही क्षमा याचना करनी होगी, आपको क्षमा करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। तो दुर्वासा मुनि जाकर दंडवत प्रणाम कर उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरणों में किया। अम्बरीश महाराज को बड़े शर्म आया कि अरे आप इतने बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं और मुझ जैसे राजा के सामने आप प्रणाम करते हो, आपको शोभा नहीं देता। और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि अगर मैंने कोई पुण्य किए हो, मैंने कोई भी भला किया हो, तो कृपा करके इस ब्राह्मण को बचाइए। तो फिर सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत हो गया, फिर सुदर्शन चक्र लौटकर कृष्ण भगवान की उंगली में वापस चले गया। तो दुर्वासा मुनि कहने लगे कि मैं आपको तो साधारण व्यक्ति समझता था, आज मैं समझ गया कि श्री हरि के भक्तों का गौरव क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनकी महानता क्या है, कितने बड़े हैं श्री हरि के भक्त। और उस समय दुर्वासा मुनि चले गए भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का गुणगान करते हुए, अम्बरीश महाराज का गुणगान करते हुए। उस दिन के बाद दुर्वासा मुनि हमेशा कृष्ण भक्तों के साथ में सावधानी से रहते थे। इसलिए इस बार जब वो आए थे और जब इन्होंने सोचा कि हम जाएंगे युधिष्ठिर महाराज के पास और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर महाराज देखेंगे, तो फिर क्या होगा, हम तो खत्म ही हो जाएंगे। तो अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यों, हमें क्या करना चाहिए? सबका एक ही मत था, कोई भिन्न मत नहीं था। क्या कहा सबने? यहां से निकल पड़े हैं, जल्दी जल्दी से अपने सामान कमंडलू सब वहीं का वहीं छोड़कर जल्दी से जल्दी भाग गए सब लोग वहां। तो सहदेव उनकी खोज में पीछे पीछे आए, अरे मुनि जी कहां हैं आप, शिष्य कहां हैं? गए देखा तो कोई नहीं वहां, और वहां तो केवल थोड़े कमंडलू इधर उधर पड़े हुए हैं और थोड़े ब्राह्मणों की सामग्री कुश इत्यादि पड़ा हुआ है। और आगे चल के उन्होंने पूछा लोगों से क्या हुआ, बोले ये तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ ऐसे भागे बस क्या कहना। तो सहदेव ने आके वापस खबर दे दी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी चिंतित थे। कहने लगे कि शायद दुर्वासा मुनि की जैसे आदत है वो अभी अचानक बीच रात में वापस आएंगे, हम जानते हैं, जैसे कि वो दूसरों के साथ करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, वो भी वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा युधिष्ठिर आप डरो नहीं, अभी दुर्वासा मुनि हमेशा के लिए यहां से गए हैं, कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी दिव्य शक्ति से, तुम्हारे तपस्या के बल से घबराते हैं, डरते हैं, इसलिए यहां कभी नहीं आएंगे वो। तो फिर सारे पांडवों ने फिर से श्री कृष्ण की ओर प्रेम की आंखों से देखा, सबके आंखों में आंसू थे, सब सोच लगे कि कृष्ण आपने ही हमें बचाया है। और इस प्रकार से कृष्ण ने कहा, ठीक है अभी सब ठीक ठाक? सबने कहा ठीक है, तब मुझे अनुमति है? उनका ठीक है। तो फिर कृष्ण भगवान फिर से झट करके द्वारका में हाजिर, रुक्मिणी देवी को कहा था मैं अभी आ रहा हूं, और तुरंत 2 मिनट में वापस आ गए। तो रुक्मिणी देवी को भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कृष्ण कहां गए थे, क्या करके आ गए, उनको पता नहीं चला। तो ये सारी घटनाएं भी अर्जुन इस समय याद कर रहे थे जबकि वो द्वारका से लौट कर आए थे। और ऐसी घटनाओं को याद करके कृष्ण का स्मरण करते हुए वो युधिष्ठिर महाराज को भी कृष्ण का स्मरण दिला रहे थे। यही सबसे बड़ा कार्य है कि हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और दूसरों को कृष्ण का स्मरण कराना चाहिए। यही सारे शास्त्रों का सार है, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेध स्योर एतयोर एव किंकराः। शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान श्री विष्णु या कृष्ण का स्मरण हमें करना चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी भगवान श्री विष्णु या कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। सर्वे विधि निषेध स्यु, सारे जो शास्त्रों में लिखे गए विधि विधान हैं, और कितने हैं ऐसे विधि विधान, लाखों लाखों विधि विधान है। एतयोर एव किंकरा, ये सारे लाखों लाखों जो विधि विधान शास्त्रों में पाए जाते हैं, ये सारे विधि विधान इन 2 विधियों के किंकर हैं, दास हैं, सेवक हैं। कौन से 2 नियमों के? हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भूलो नहीं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण में हमेशा है, उसे भला वेदों के नियमों का पालन करने की क्या आवश्यकता? ये शुभ घड़ी, वो अशुभ घड़ी, हर घड़ी शुभ है उसके लिए, हर जगह शुद्ध है, शुभ है उसके लिए। तो अर्जुन भी ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, जैसे कि अन्य पांडव भी थे। तो इन लीला से हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे शुद्ध भक्ति के पथ पर चलना चाहिए। हमारे सामने आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से, राधा गोकुलानंद जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा करके हमारे हृदय में भी ऐसे ही भावना, ऐसे ही प्रेम की भावना हृदय में दीजिए जैसे कि अर्जुन के अंदर थी, तो हम भी आपका हमेशा स्मरण कर सकें जीवन भर। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जब हम प्राण त्यागेंगे, तो भगवान ने तो वचन दिया ही है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, कि हे अर्जुन, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है अवश्य वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, यह बिना संदेह के जान लो। तो ये हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है। तो हमारे सारे जीवन को हमें ऐसे करना चाहिए कि हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें और कभी उनको भूले नहीं। तो हमें ज्यादा सत्संग में आना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप और कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण के बारे में इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। मंदिर में आके भगवान श्री राधा गोकुलानंद की सेवा करनी चाहिए, और ऐसे बार बार करने से कृष्ण का स्मरण हमारे हृदय में बढ़ जाएगा। अगर हम बाहर संसार में ज्यादा संग करेंगे और भक्तों का संग कम कर देंगे, तो फिर भगवान को भूल जाएंगे, माया का स्मरण आएगा। इसलिए सत्संग में आना और बार बार आना और हृदय से सत्संग करना, यह बहुत आवश्यक है। केवल अपने शरीर को यहां लाना और मन को वहां छोड़ना काफी नहीं है। जब शरीर को ले आते हैं हम, तो मन को भी साथ में ले आना है, ताकि मन भी अगर यहां रहे तो फिर मन शुद्ध हो सकता है। और अगर किसी वजह से हमारा शरीर यहां नहीं आ पाए, कम से कम मन को तो ले जा सकते हैं यहां पर। आप बीमार रहे, अचानक कोई ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए, ठीक है, शरीर नहीं आ पाया तो मन तो आ सकता है। जिस प्रकार अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कृष्ण का, आप भी यह मंदिर के कार्यक्रमों का, भगवान श्री श्री राधा गोकुलानंद का और कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकते हैं, घर में बैठकर जाप कीर्तन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए। यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कि थोड़े समय के लिए किया और उससे हम संतुष्ट हुए, नहीं। भक्ति मार्ग में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं, इसलिए आसानी से कृपा देंगे, लेकिन उन भक्तों के ऊपर जो हृदय से उनकी सेवा करते हैं, जिनके हृदय में छल कपट की भावना नहीं है, जो पूरी तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं और जो वैष्णवों की निंदा कभी नहीं करते हैं, तो वैष्णवों के संग में प्रेम से रहकर कृष्ण भगवान की सेवा करते हुए हम हमारे मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो आपके कोई प्रश्न हो, एक या दो, तो पूछ सकते हैं। आखिर में श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए थे? जी हाँ, श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त कर चुके पृथ्वी लोक के ऊपर, जैसे वो अपनी स्वेच्छा से आए थे, अपनी आत्म माया अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, ठीक उसी तरह अपनी स्वेच्छा से अपनी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर वो अपने धाम लौटकर चले गए। लेकिन जब चले गए तो उन्होंने क्या छोड़ा? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कृष्ण जब चले गए धर्म ज्ञान इत्यादि को लेकर, तो अपना वो और एक अवतार छोड़कर चले गए, अपना और एक रूप छोड़कर चले गए जो उनसे अभिन्न है, और वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो कि कलौ नष्ट दृशाम एष, कलयुग के लोगों की दृष्टि, जो कि जो लोग अंधे हैं उनको फिर से उजाला दृष्टि या रोशनी देने के लिए, पुराण अर्कः अधुन उदितः, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो कि सूरज के समान है और जिसका उदय अभी अभी हुआ है, अधुन उदितः, पुराण अर्कः, अर्क मतलब सूर्य, पुराण आर्को अधुन उदितः। तो श्रीमद् भागवत छोड़ के गए भगवान श्री कृष्ण। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण चले गए अब हमारा क्या होगा, नहीं, श्री कृष्ण चले तो गए लेकिन फिर भी हमारे बीच में हैं। श्री कृष्ण अपने अर्चा विग्रह के रूप में हमारे पास में हैं, हम हमेशा उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् श्री कृष्ण अपने हरि नाम में हैं, हरि नाम भी अवतार है भगवान का, भगवान से अभिन्न है, और फिर श्रीमद् भागवत के रूप में भी भगवान हमारे बीच में हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी विराजे हैं। तो इतने अलग अलग रूपों में भगवान श्री कृष्ण हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए यहां पर आए हैं। तो भगवान के इन अलग अलग रूपों का हमें लाभ लेना चाहिए। तो अब भगवान का और एक विशेष रूप में लाभ लेने का समय आ चुका है, और वो है कृष्ण प्रसाद। इसके लिए क्योंकि समय हो रहा है, तो हरिनाम संकीर्तन करके फिर हम कृष्ण प्रसाद का सेवन करेंगे, फिर गीता श्लोक का पाठ, एक भजन होगा, इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे